यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रे जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा
कृष्णा। सब लोगों को मेरी विनती है कि आप दो मिनट के लिए खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा जय हो। और माता जी लोग दो कदम आगे आके बैठो। हाँ ठीक, सब लोग हाथ ऊपर करो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो। बैठ जाइए। 30 मिनट बैठने के बाद में अगर मैं कथा चालू करूंगा तो 40वें मिनट में क्या होगा। हरी बोल। जय हो श्री राधे श्याम। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। मनुष्य के जीवन में सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जीवन ही बहुत दुर्लभ है। बहुत ही समय के बाद, बहुत ही जन्मों के बाद प्राप्त होता है। इस पर कितने लोगों को विश्वास है? कितने लोगों को विश्वास है? बहुत 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 धक्का खाने के बाद फिर मनुष्य के योनि में जन्म होता है। मनुष्य की माता के गर्भ में जीव मनुष्य का शरीर धारण करके फिर धीरे धीरे पलता है, फिर मनुष्य बनकर जन्म लेता है और इस जीवन में उसको बुद्धि प्राप्त है, बहुत सारी कला प्राप्त हो सकती है और क्या अच्छा है क्या बुरा है वो समझने की बुद्धि भगवान ने दी है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी ज्ञान होता है। चोर को भी पता होता है कि चोरी कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। सिगरेट पीने वाले को पता होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। अपनी पत्नी को छोड़कर किसी के साथ संबंध करते हुए उसको भी पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। किसी की चोरी कर रहा हूं उसको पता है गलत काम कर रहा हूं। ये जानवर में नहीं होता है। जो जानवर जाके तुम्हारे घर में बिल्ली आकर तुम्हारा दूध पी लेती है तो उसको पता नहीं कि मैं चोरी कर रही हूं। उसको जहां पर भी भोजन है वो करना चाहिए, सब हमारे लिए बनाया हुआ है ना। गाय है, कुत्ता है, बंदर है, थोड़े उसको पता होता है कि ये नहीं खाना चाहिए, ये दूसरे का है, जो मिलेगा वो खाना चाहिए, जो सब कुछ सामने दिखता है वो सब मेरा है, भूख लगे तो खाना चाहिए, ऐसा उसको लगता है। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे अच्छे नियम जो जीवन को जो होते हैं ना, वो मनुष्य के लिए होते हैं, पशु के लिए नहीं होते। तो इसलिए कोई गंदा व्यवहार करता है तो बोलते कि क्या जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है जानवर कभी भी निसर्ग का नियम का तोड़ते नहीं कभी। वो आपने कभी किसी जानवर को एबॉर्शन करते हुए देखा है? कभी देखा है? जानवर कभी भी एबॉर्शन नहीं करता है, खाली इंसान करता है दिए हुए दिमाग का गलत इस्तेमाल करके। जानवर का भी बच्चे पैदा करने का एक समय होता है, तभी वो नर मादी को मिलते हैं, पंछी भी उसमें घोंसला बनाते हैं। लेकिन इंसान ऐसा आदमी है, वो 12 महीने उसका चलता है, प्रोडक्शन चलते रहता है। तो कुछ स्थिति में जानवर इंसान से बढ़कर है, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसमें इंसान सबसे बढ़कर है, वो ये कि उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त है जिससे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। जानवर को, पंछी को, सांप को, मच्छर को और मछली को, पेड़ को, वो बुद्धि नहीं प्राप्त है जिससे वो भगवान को मिल सकता है। इंसान पढ़ सकता है, बोल सकता है, भाषा 50 प्रकार की भाषा दुनिया में, सैकड़ों प्रकार की भाषा है, बोल सकता है, और उससे फिर ये समझ सकता है कि ये जीवन का उद्देश्य जानवर की तरह भोग लेना नहीं है, इस जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। ये केवल आप और हम लोगों को समझ में आ सकता है। और समझ में कैसे आएगा? वो समझ में आएगा, एक और एक दुर्लभ चीज है मनुष्य के जीवन से भी अधिक दुर्लभ चीज है, वो है संतों का संग। संतों का संग करेगा तो जो बुद्धि उसको मिली है उसके आधार पर वो समझ सकता है, जो भी वो सुनेगा वो समझेगा कि हाँ ये सही है, इसे करना चाहिए, और करने लगेगा तो कुछ मुश्किलें आएगी, लेकिन निश्चय ऐसी एक वस्तु है जो केवल इंसान को भगवान ने दी है। आप यकीन मानते हैं उसको? कोई कुत्ते को देखा है निश्चय एकदम इस चीज के लिए? ऐसा नहीं, भूख लगा तो खाना है, दैट्स ऑल। जब मूड आए तो फिर कुत्ते के साथ संबंध करना है, जब भी मन करेगा वो करना है बस। लेकिन निश्चय नाम की चीज किसी उच्च वस्तु के लिए वो केवल इंसान को दी है। तो संतों के संग में आप कुछ सुनेंगे और उसमें कुछ आपको लगेगा कि हाँ करना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है प्रभु जी, बहुत मुश्किल है, फिर भी बोलेगा नहीं मुझे करना है, मैं समझ गया हूँ कि ये करना जरूरी है। अभी पढ़ाई करना है आपको, एग्जाम आ गई है, बहुत खेलने का दिल कर रहा है आपको, टीवी देखें, अभी बच्चे लोग छोटे छोटे टीवी देख रहे हैं और मैं 10वीं की परीक्षा में बैठा हूँ, मुझे नहीं इच्छा है पढ़ाई करने की, लेकिन आपको पता है नहीं, फिर भी मुझे सब कुछ छोड़ के आज बैठना है, कल एग्जाम दे के आना है। ये निश्चय जो है ना, वो केवल आपके पास में और किसी के पास नहीं है। उसी के ऑपोजिट होता है कुसंगति, गलत संगति। जितना सत्संग करना जरूरी है उतना ही कुसंगति को साथ साथ टाल देना भी जरूरी है। अभी तक तो हम लोग ऐसे मजा कर रहे थे, कुछ सिगरेट पीने वाले मित्र भी थे, कुछ दारू वाले मित्र भी थे, कुछ और गलत काम करने वाले दोस्त भी थे, कुछ पार्टी करने वाले भी थे, कुछ टाइम पास भंकस करने वाले दोस्त भी थे। अभी हम लोग संतों की बात सुनकर अब सोच लिया कि भक्त बनेंगे, तो फिर वो दारू पीने वालों का और सिगरेट वालों का और व्यभिचार वालों का संग आपको छोड़ना पड़ेगा, दोनों पटरियां साथ नहीं चलेगी। थोड़ा आप जब भी कर रहे हैं थोड़ा दारू भी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो नहीं सकता है। पढ़ाई करना भी है तो आपको पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ ही पढ़ाई करना पड़ेगा, और टाइम पास करने वाले विद्यार्थियों से दूर रहना पड़ेगा आपको, जो हमेशा टीवी देख रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कुछ मजा कर रहे हैं, एग्जाम आए तो पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का संग आपको छोड़ना पड़ेगा, और ढूंढना पड़ेगा कि पढ़ाई करने वाले कौन है, उनके साथ बैठना पड़ेगा आपको, उनके साथ साथ रह के आपको भी पढ़ाई करने का मूड आएगा। ये हमारा खुद का अनुभव है, कॉलेज में पढ़ाई में मन ही लग रहा नहीं लग रहा है, रूम में बहुत बोर हो रहा है, नींद आ रही है, तो हम लाइब्रेरी में जाते थे क्योंकि वहां सब लोग किताबें खोलकर बैठे हुए और वो रट रहे हैं बिल्कुल बैठ के, तो आपको भी 10-15 मिनट के बाद भी मूड आएगा कि अरे भाई चलो मैं भी रटता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी थप्पी लगा कर किताब में, किताब के अंदर घुसे हुए हैं सब लोग, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है भाई हमारा भी पढ़ाई, 2-4, 10-15 मिनट के बाद में आपका भी मन लगेगा, फिर वो बोलेंगे चलो थोड़ा जाते हैं कैंटीन में, थोड़ा सा खा के आते हैं, उधर भी डिस्कस करेंगे क्या पढ़ा, तो आपका मूड बनेगा। लेकिन वो जब डिस्कस कर रहे हैं मूड बनाने के लिए, तब कोई अगर टाइम पास करने वाला विद्यार्थी आ गया बीच में, तो आपको वहां से उठकर जाना चाहिए, क्योंकि वो अपना टाइम पास चालू करेगा तो कभी दो घंटा बीत जाएगा, आपको समझेगा नहीं। तो ये सब इसलिए बता रहे हैं कि जितना सत्संग जरूरी है उतना कुसंगति को टालना भी जरूरी है। और मैं आज आपको रामायण से वो कथा बताऊंगा कि कुसंगति समय पर अगर ना बोल के उसको भगा नहीं दिया आपने तो कैसा विनाश होता है, उसकी रामायण में कथा आती है। आप जानते हैं दशरथ महाराज ने बहुत सारी रानियों के साथ विवाह किया था, राजा को अधिकार है बहुत सारी रानियों को साथ विवाह करने का, लेकिन तीन प्रमुख रानियां थी उनकी, एक थी कौशल्या, एक थी कैकेयी और एक थी सुमित्रा। उसमें कहते हैं कैकेयी बहुत सुंदर थी, अति अति सुंदर थी, उसकी सुंदरता के साथ साथ उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण भी थे, वो बहुत ही सेवाभावी थी, हमेशा अपने पति दशरथ का इतना ख्याल रखती थी, क्षत्राणी भी थी, घोड़े पर सवार भी होती थी, शस्त्र भी चलाती थी वो, और युद्ध में भी अपने पति के साथ जाती थी वो। एक बार ऐसा युद्ध हुआ कि पति उसके युद्ध वो सारथ्य कर रहे थे, मतलब वो सारथी बनी थी पति की, आप सोच सकते हैं त्रेता युग में, हाँ जब दिव्यास्त्र का प्रयोग हुआ करता था, तब एक राजा की रानी सारथी बनकर अपने पति का सार रथ चला रही है, उसमें दशरथ राजा बेहोश हो जाते हैं, तो बड़ी ही कुशलता से शत्रु के द्वारा और बाण न लगे और मर न जाए, तुरंत उसको घुमाकर तुरंत तम्बू की ओर ले जाती है और बेहोश पति की सेवा करती है, उसको होश में लाती है, फिर उसको उत्साह भी देती है, ऐसा नहीं कि भाई आज अभी तुम थके हुए हो तो छोड़ो, अभी आप क्या पता नहीं क्या होगा आपका, कैसे आप ऐसे बेहोश हो गए, कैसे वीर हो आप, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। एक जख्मी जवान को भी हौसला देना पड़ता है, उत्साह देना पड़ता है, फिर वो दोबारा शस्त्र उठा के आता है, तो हौसला भी दिया अपने पति को, फिर पति आकर युद्ध में खड़े हो गए। तो उस समय कैकेयी को प्रभु दशरथ ने कहा था कि आप वर मांग लो, दो वर मांग लो आप, तो वो इतनी संतुष्ट थी पति की सेवा में, इतनी खुश थी, मतलब मुझे सेवा मिल रही, पति ऐसे उत्कृष्ट पति मिले हुए हैं, इतने सद्गुण संपन्न थी वो, अच्छे घराने की थी वो, तो कहते मुझे कोई जरूरत नहीं, अभी कभी मांग लूंगी आगे जाकर। और वो बड़ी आसानी से उसको भूल जाती है, उसको बिल्कुल याद भी नहीं उसके बारे में। और सुंदरता के साथ साथ व्यक्ति को बड़ा गर्व होता है, कभी इनको बिल्कुल गर्व नहीं था, वो अपने पति को प्रसन्न करने में हमेशा लगी रहती थी, पति का दिल हमेशा बहलाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए रहा करती थी। आज हम सब लोग कैकेयी को विलेन के रूप में जानते हैं कि वो रामायण की एक विलेन है, खलनायिका है वो, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं थी, वो राम पर अपने भरत से भी अधिक प्रेम करती थी, और राम भी उनसे एक तरह से कहा जाए तो अपनी कौशल्या माँ से भी अधिक प्रेम करते थे, कोई भेदभाव के रूप में नहीं, कोई फेवरेट के रूप में नहीं, स्वतः था वो, जैसा वो कर रहे थे वैसे वो भी कर रहे। और प्रभु राम तो ऐसे आदर्श पुत्र थे कि सौतेली माँ से वो जानबूझकर सही माँ से भी अधिक प्रेम करते थे, ताकि लगे नहीं कि वो कोई भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि वो राजा थे, आदर्श युवराज थे वो। लेकिन हुआ ऐसा था कि जब प्रभु राम का विवाह हुआ सीता के साथ में, तो सीता के पिताजी थे जनक महाराज, उनको एक और एक कन्या थी उर्मिला नाम की, उनका विवाह तय हुआ लक्ष्मण के साथ, बोले उसी के साथ में कर लेते हैं, चारों भाइयों का विवाह कर लेते हैं। तो उनके एक मित्र थे जनक महाराज के, कुशध्वज, उनको दो कन्या थी, बड़े अच्छे मित्र थे वो, तो उन्होंने सुझाव दिया दशरथ महाराज को कि मेरे मित्र को भी दो कन्याएं हैं, क्यों नहीं भरत और शत्रुघ्न को उनका विवाह किया जाए, तो उन्होंने कर दिया। तो भरत की शादी, जब ये सबकी शादी साथ में हुई ना, और चारों अपनी चारों पत्नियों को लेकर अयोध्या लौट के आए, लेकिन वो जो कैकेयी के पिताजी थे उनके राज्य में उनको पुत्र न होने की वजह से भरत जी हमेशा जाया करते थे संभालने के लिए, समझो आपके ससुर जी को पुत्र नहीं है और वो दो ही कन्या है, एक दो जवाई हैं खाली, बस वो पुत्र की तरह ही काम करते हैं, सब कुछ देखते हैं, देखभाल करते हैं, बीमार हो गए तो सब देखभाल करते हैं, वैसे राज्य का देखभाल करने के लिए भरत जी हमेशा उधर रहा करते थे, तो अधिक समय बाहर और ज़्यादा समय बाहर और अधिक समय, मतलब बाहर और कम समय अयोध्या में रहा करते थे। लेकिन राम जो थे वो हमेशा शादी के बाद में और पहले भी अयोध्या में ही रहते थे और अयोध्या में रहे। और राम के इतने सद्गुण थे, इतने सद्गुण थे कि वो सभी अयोध्या के लोगों का दिल जीत लिया उन्होंने। केवल राजा के पुत्र के रूप में नहीं, एक आने वाले योग्य राजा के रूप में सबका दिल अपने गुणों से, अपने व्यवहार से, अपनी देखभाल से, अपनी करुणा से जीत लिया उन्होंने। सब लोग ध्यान से सुनिए, अगर नींद आती है तो खड़े हो जाइए, क्योंकि कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सुंदर वर्णन रामायण में दिया है। तो फिर एक दिन प्रभु रामचंद्र को राजा बनाना चाहिए, ऐसा विचार दशरथ के मन में आता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बुढ़े हो गए और उनको छोड़ के अभी चलने को नहीं होता है, ऐसा नहीं। उनको लगा कि अभी इतने राम, मेरे प्रभु, मेरे बालक राम इतने प्रिय हो गए लोगों के, अभी यज्ञ योग्य समय उनका राजा बनने का। तो वो सपने 8 ऋषि को, ऋषियों को बुलाते हैं जो उनके सलाहकार हैं, गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं, वो चर्चा करते हैं। वो सब लोग बोलते हैं हाँ सही है, यू आर राइट, अभी आप राम को राज्याभिषेक कर लो। तो उसका मुहूर्त भी निकालते हैं, आप दुर्भाग्य कहिए या तो कैसे कर्म धर्म संयोग कहिए, उस समय पे भरत उधर थे, अलग राज्य में थे, उतने भी तय भी होता। तो कहते कि मुहूर्त जो है वो अभी तुरंत है, 2 दिन के बाद में, अभी आप उसको छोड़ोगे तो बहुत समय मुहूर्त नहीं आएगा। संत लोगों की आज्ञा से वो कहते नहीं नहीं करो, अभी आप अभी वेट मत करो, आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ो। तो सारी जल्दी जल्दी में व्यवस्था होती है, और कल अभी राज्याभिषेक होने वाला है, तो आज भी कुछ विधियां चल रही हैं। तो स्नान चल रहा है राजा का, युवराज का यज्ञ चल रहा है, उसमें आहुति अर्पण करनी है, पत्नी को भी बैठाना है, युवराज पत्नी को, सीता को। तो उसमें मंथरा जो है ना, वो कैकेयी की सेविका है, वो कैकेयी देश से आई थी। जब शादी हुई थी कैकेयी की दशरथ के साथ, तभी राजा लोग क्या करते थे, अपनी कन्याओं के साथ में 100 कभी 1000 अलंकार पहन के, सुंदर अलंकार पहन के सुंदर दासियां भेजते थे सेवा करने के लिए। जो फिर जैसे वो आ रही है कन्या, उसके साथ में वो भी ससुराल रहते थे, सैकड़ों हजारों दासियां। उसमें मंथरा थी, वो बचपन जब कैकेयी छोटी थी तब से कैकेयी की देखभाल में अपनी माँ के घर में रहती थी वो। ऐसा नहीं कि वो ऐसे जवान लड़के को भेज दिया, जब से कैकेयी बालिका थी छोटी सी गोद में, तब से कैकेयी की सेवा वो मंथरा का किया करती थी। तो एक विश्वासु देखभाल करने वाले के रूप में उस थोड़ी सी बुढ़ी, और जिसको पीठ में ऐसा एक कांप भी था, क्या कहते हैं उसको, कुबड़, हाँ उसको, वो झुकी हुई थी बहुत, उसमें एक बड़ा सा ऐसा पत्थर जैसा था उसके पीठ पर, वैसी थी वो, हंच बैक कहते हैं उसको, कुबड़ी थी वो। तो एक अच्छी सलाह करने के लिए, देखभाल करने के लिए उसको भी भेज दिया था। तो ये राज्याभिषेक के दिन शाम को छत से देख रही है, क्या देख रही है, अरे अयोध्या में इतना सारा डेकोरेशन किया गया है, और क्या देख रही है, कौशल्या भर भर के, दिल भर के दान लोगों को दे रही है। तो उसको खुशी नहीं हुई, उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्रोध आया उसको। देखो जब मन किसी का खराब होता है ना, तो उसको सब चीज खराब ही दिखती है। वो सोचते है, देखो अभी भरत के बिना, अभी भरत के अलावा राम का अभिषेक होगा, राज्याभिषेक, तो राम की माता का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। समझो आपका पुत्र, अभी 4 औरतें हैं, 4 पत्नियां हैं, और एक की पत्नी का पुत्र राजा बन गया, तो उसका थोड़ा राजमाता के रूप वैल्यू बढ़ेगा ना उसका। तो फिर कैकेयी का वैल्यू कम हो जाएगा, फिर कैकेयी को जितना दान धर्म करना होगा तो कौशल्या को पूछना पड़ेगा कि दीदी कुछ मुझे देना है दान, जरा कुछ आइटम दे दो मुझे आप भंडार से, हर बार ऐसे पूछना पड़ेगा। तो फिर अगर कैकेयी का जो अधिकार था, क्योंकि कैकेयी ने अपने सौंदर्य की वजह से राजा को अपने वश में रखा था बहुत समय के लिए, अब तक तो उसका सौंदर्य उसको टॉप में रखा था उसने, है ना, सौंदर्य की वजह से, पत्नी के दृष्टि, पति के दृष्टि से वो एक नंबर 1 की पत्नी थी, पटरानी थी बोल सकते हैं आप। लेकिन अभी राम राजा बनेगा तो कौशल्या शायद नंबर 1 पे आ सकती है, और मेरी मालकिन नंबर 2 पे जा सकती है। फिर नंबर 2 की दासी क्या कहें उसका, कोई वैल्यू नहीं बचा उसका। तो अपने ऊपर आने वाले गरीबी को सोच कर वो कहती कुछ करना चाहिए, अभी आज की रात है, आज रात में अगर कुछ पलटी नहीं हुई कुछ चीजें, तो जीवन भर भिखारी बनकर रहना पड़ेगा, ऐसा उसके मन में विचार आ रहा है। देखो आप, प्रभु रामचंद्र के राज्याभिषेक के विषय में उसके मन में ये विचार आ रहे हैं। इसको दुर्भाग्य कहते हैं, बैड लक कहते हैं उसको, बदनसीबी कहते हैं उसको। तो भाग के वो कैकेयी के महल में जाती है, तब कैकेयी थोड़ा सा आराम फरमा रही थी, तो देखती है, देखो जब विनाश आने का समय होता है ना तो मूर्ख लोग सोते हैं उस समय, ऐसे ही ये मूर्ख हमारी मालकिन सो रही है, उसको पैरों को हिला हिला कर जगाती है, कैकेयी उठ जाओ। बोला क्या हुआ, मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ आपको। तो कहते कल प्रभु राम रामचंद्र का अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक, राजा बनने वाले हैं। तो कैकेयी इतनी खुश हो जाती है, वो कहती है मेरे पूरे जीवन में इससे अधिक खुशी की खबर आज तक मैंने सुनी नहीं, ये ले। गले का एक रत्नों का बड़ा हार होता है एकदम बहुत जोरदार, वो निकाल के उसको दे देती है। अभी दासियों को रानी हमेशा कुछ ना कुछ अंगूठी कुछ ना कुछ निकाल देते रहते, कमर पट्टा वगैरह, खुशी की बात दी तुरंत उसका मुंह मीठा करते हैं, कुछ गहना देते हैं, राजाओं का रिवाज है। ये औरत जानबूझकर उस हीरे के लदे हुए हार को से जमीन में पटक देती है। ऐसा वर्णन आता है कि पूरा कैकेयी का जो महल है उसकी पूरी जमीन जो है ये टूटे हुए मणियों से और रत्नों से भर जाती है। इतना कीमती हार देते ना, वो पूरा जमीन ऐसे भर जाती है उससे। तो फिर भी कैकेयी समझाती है, अरे तू इतनी नाराज क्यों है, इतना क्या हो गया है। वो कहते हैं तेरा विनाश का काल आ गया है और तू सो रही है, ऊपर से खुश भी हो रही है, तुम्हारे विनाश की खबर से तुम खुश हो रही हो। बोले विनाश की खबर कैसे है, मेरे प्रिय राम का अभिषेक है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। वो भरत से भी अधिक मेरी सेवा करता है, अपनी मां से भी अधिक मेरी सेवा करता है। बताइए उस कैकेयी तो मूर्ख औरत है। बोले कैसी मूर्ख हो, तेरी मति मारी गई है मंत्रा, तो क्या बोल रहे, तो समझ में आ रहा है तुझे, मेरे प्रिय प्रभु मेरे प्रिय राम के प्रति तुम संशय पैदा कर रही हो। वो कहते हैं कैकेयी मूर्ख हो तुम, तुम्हारे सौंदर्य की वजह से आज तुम नंबर वन की पत्नी हो, लेकिन कल से तुम नंबर दो की पत्नी हो जाओगी। मैंने देखा कौशल्या तो बड़े भर भर के अपने हाथों से भंडार से सामान निकाल निकाल कर दान दे रही थी, कल से तुमको कौशल्या से पूछना पड़ेगा दीदी कुछ दे दो मुझे भी दान देना है, फिर हम सब लोग भिखारी बन जाएंगे और तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। फिर भी कई कई समझा रही उसको, अरे नहीं मंत्रा ये सब गलत फहमियां हैं, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, कोई भेदभाव नहीं करेगी, हम साथ में मिलकर रहते हैं। तो मंत्रा सोच रही है कि आज तक सौंदर्य के बल पर उसने दशरथ पर राज जमा लिया अपना, लेकिन अभी बुद्धि की सेवा उसका आगे का काम मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे उसकी बुद्धि बनने पड़ेगी, उसके होश ठिकाने लाने पड़ेंगे। पहले अभी तक कई कई डांट रही है उसको, नहीं 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 आप जो बोल रहे हो सही नहीं बोल रहे हो। तो फिर ऐसा एकदम लाल आंखें करके खड़ी जाती है और कहती है कैकेयी अब मेरे तीन कारण सुन लो, जिसके वजह से आपका, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपका विनाश निश्चित है, अगर समझ में आएगा तो आपका कल्याण निश्चित है। और मैं ये क्यों बार बार कह रही हूं अभी आप ध्यान से सुन लो। ऐसा एकदम ऐसा स्टैंड लेके, मतलब पता है ना कभी कभी हम लोग आराम से बात करते हैं, बाद में एकदम ऐसा गंभीर होकर बात करते हैं, मतलब बस अभी टाइम पास खत्म, अभी मेरी बात सुन लो, नो मोर वेस्ट ऑफ टाइम। चलो ठीक है क्या बोलना तुझे। बोलते तुम्हारा, तुम्हारे पुत्र भरत का और तुम्हारे पिता कैकेयी देश के राजा, तीनों का भवितव्य अंधकार में है। नंबर वन तुम आज तक सौंदर्य की वजह से नंबर वन पोजिशन में थी, आज से तुम इतनी मूर्ख औरत है कि तुमने अपने पुत्र को हमेशा अयोध्या से दूर रखा, इसलिए अयोध्या के लोग राम पर प्रेम करने लगे और राम ने पूरा इतने सालों में समय का पूरा इस्तेमाल करके पूरे अयोध्या के ऊपर अपने मन के ऊपर राज्य बना लिया है, सबका दिल जीत लिया है, और तुमने अपने पुत्र को कोई मौका ही नहीं दिया, हमेशा अपने पिता के राज्य में भेजती रही उसको, उसको अच्छे गुण होने के बावजूद भी उसको मौका नहीं मिला ये दिल का दिल जीतने का लोगों का, और हमेशा तुमने जाने अनजाने में कौशल्या का अपमान आप करती रही क्योंकि आप टॉप में थी ना, वो अपमान निगलती रही कौशल्या, लेकिन राम नाम की छुरी को वो धार देती रही हमेशा। कितनी देखो बात बात कैसे कर रही है, ये वाक्य है उसके अंदर, राम नाम की तलवार को वो धार देती रही हमेशा उसको पता था कि मेरे पति के हृदय पर राज्य करने के लिए यही एक तरीका है, क्योंकि इतनी सुंदर तो मैं नहीं हूं कई कई की तरह। तो पुत्र को आगे करके उसने पति पर अपना रोब जमा लिया है, ऐसे कई कई समझा रही है उसको। कैसे कूट व्यक्ति कैसे होते, देखो कैसा सोचते हैं और कैसा लोगों को कन्विंस करते हैं। इसलिए खुद नंबर टू में थी कौशल्या, लेकिन अपने पुत्र को हमेशा पिता के आंखों के सामने रखती थी। और जब विश्वामित्र मुनि आए थे ना उनको लेकर जाने के लिए, तो दशरथ जी कहते भी है, अरे महाराज आप 9 दिन की बात कर रहे हो मेरे पुत्र को ले जाने की, 9 दिन बड़े लंबे होते हैं, मैं एक क्षण भी प्रभु मतलब मेरे पुत्र को देखे बिना रह सकता नहीं हूं, एक क्षण भी। और ये हकीकत थी, हमेशा 24 घंटे वो अपने आंखों के सामने राम को रखते थे, इतना प्रेम था उनका राम, पिता पुत्र का इतना प्रेम था। तो कहते ये सब कौशल्या का षड्यंत्र है, उसने जानबूझकर प्रभु राम को हमेशा उसके सामने रखा है। तो अभी तुम नंबर टू बन जाओगी और कौशल्या नंबर वन बन जाएगी, यही तुम्हारा अंधकार का जीवन यहां शुरू होता है। आज तक तुमने इतना आनंद अनुभव लिया, अभी तुम धीरे धीरे ऐसे नंबर टू नंबर थ्री पर जाओगे, कोई तुझे पूछेगा नहीं, मांगना पड़ेगा तुझे हर चीज के लिए। रानी होने के बावजूद भी, इतना ईश्वर होने के बाद भी, जो मन मर्जी करने की आदत आपको पड़ गई है वो आपकी छूट जाएगी। अभी आपको कौशल्या के नीचे ही रहना पड़ेगा, दासी बनकर रहना पड़ेगा, और तुम्हारा पुत्र भी दासी पुत्र के रूप में जाना जाएगा, और हम सब तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, तुम दासी, तुम्हारा पुत्र भरत दासी पुत्र हो जाएगा। तो एक बात उसको समझ में आई कि गड़बड़ मामला है, बात में दम तो है। मतलब वैसा होता होता, कभी कभी कैसा होता है, दीवार बहुत चिकनी होती है और आप किला लेकर जाते हो और हथौड़ा मारते हो तो किला खिस करके घिसलता है, फिसलता है ना, वो जगह पर रहता ही नहीं है, और एक मारता और भी फिसल जाता है। फिर आप क्या करते हो, एक पहला एक ऐसा स्क्रू घुमाते हो उसके अंदर, एक छेद बनाते हो, फिर किला रखते हो और फिर उसको मारते हो, तो थोड़ा सा किला बैठ जाता है अपनी जगह पर, फिर बाद में ठाक 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 करके पूरा किला घुसा देते हो। वैसे उसकी उसका हृदय तो था ना, मन हृदय था, उसकी बुद्धि थी, वो एक फिसलने की तरह थी, वो कैकेयी का जो वार था उसमें टिक नहीं रहा था, लेकिन कैकेयी ने अभी एक छेद कर लिया उसके ऊपर और एक शॉट भी दे दिया उसके ऊपर। फिर कहते हैं भरत का कैसे नुकसान होगा इसके अंदर, अरे भरत को कौन पूछेगा, वो तो लोकप्रिय भी नहीं है क्योंकि वो बाहर रहता हमेशा, वो नंबर टू का बनेगा नंबर थ्री का बनेगा, कौन पूछेगा उसको, तुम्हारे पुत्र राजा बनने के योग्य सद्गुण संपन्न है, तुम्हारा पुत्र राम के बराबरी में कोई नहीं है, ना शत्रुघ्न है ना लक्ष्मण है, क्योंकि लक्ष्मण तो राम ने बहुत ही कूटनीति से उसको पहले दास बना के रखा है, लक्ष्मण को तो व्यक्तित्व ही नहीं कुछ, जब से जन्म हो गया लक्ष्मण का तब से राम ने उसको अपने कब्जे में इस तरह से वश करके रखा है, वो तो राजा बनने का सोच ही सकता नहीं कभी, इतना उसकी मति राम ने अपने कब्जे में रखे हुई है। देखो इस जो प्रेम है और जो मित्रता है और एक सख्य है दोनों भाइयों का, उसको कैसे देख रही है वो कूटनीति वाली औरत, कि ये राम का षड्यंत्र है, उसने जानबूझ के लक्ष्मण को ऐसा दबा के रखा है कि वो दुनिया में कभी भी बोल सकता नहीं कि मैं राजा बनने के योग्य हूं। अरे बात शत्रुघ्न की, वो तो भरत का सेवक है और राम का छोटे से छोटा भाई होने के बदले में वो तो कभी बोल ही सकता नहीं है, तो मेरे विचार से भरत एक ही ऐसा व्यक्ति है जो राम के बराबर है, तुल्य बल है, अगर राजा बनना होगा तो दोनों इक्वल फाइट है उसके लिए, सद्गुणों में दोनों संपन्न है। और मेरा तो ये विचार है कि तुम राजा की पटरानी हो, आप सबसे प्रिय हो, तुम्हारा ही पुत्र राजा होना चाहिए, और तुम तो अपने हाथ से राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर इतनी खुश रही हो, अपने बेटे को नरक में भेज रही हो तुम, कितना कष्ट होगा उसको उदास बनकर रहने का। तो ये भी बात तुझे समझ में आई, अरे हाँ तो मैंने सोचा ही नहीं कभी, कौशल्या ने तो अपने राम को हमेशा पिताजी के सामने रखा और मेरा पुत्र तो दूर ही रहा, सही बात है, इतना लोकप्रिय तो राम ही है, भरत तो नहीं है, ये भी बात सही है, अरे बाद में नंबर टू बनेगा दास बनेगा, ये भी बात तो सही है, दो बात तो समझ में आई। लेकिन मंत्रा ये पिताजी का धोखा कैसा है इसके अंदर मेरे, वो तो साझी करके मैं यहां पर आ गया, पिताजी अपने घर पे। अरे मूर्ख है कई, सीता के पिताजी जनक महाराज, इनका शत्रुत्व है मेरे तुम्हारे पिताजी के साथ, और तुम प्रिय पटरानी थी इसलिए जनक ने कभी हिम्मत नहीं किया तुम्हारे पिताजी के राज्य पर हमला करके उसको हड़प लेने का, लेकिन वो मौका ही ढूंढ रहे हैं, जब उनकी बेटी का पति जब राजा बनेगा तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, और फिर वो स्थिति का लाभ लेते हुए पहले जनक महाराज मिथिला से आक्रमण करेंगे केकय देश पर, और तुम्हारे पिताजी का राज्य हड़प करेंगे, तुम्हारे पिताजी भी भिखारी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम राजा बनने वाला है, सीता पटरानी बनने वाली है, रानी बनने वाली है अयोध्या की। तो जो अयोध्या की रानी है उसके पिताजी का पलड़ा भारी हो गया ना, फिर राम के साथ मिलते हुए वो संगनमत करेंगे और उधर हमला करेंगे। तो उसके भी बात समझ में आई, मंथरा वो तो बड़ी बुद्धिमान है, ये तुमने जो सोचा मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो मूर्ख थी। और तुम केवल सुंदर हो, बुद्धि तो तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं। अक्सर सुंदर औरतें बुद्धू होती है, वो सुंदरता के इसके अंदर इतनी फंसी रहती है कि उसको विचार करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो वो कहती है थैंक यू वेरी मच मंथरा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बीच में क्या हुआ, जिसको प्रभु राम पर इतना अटूट प्रेम था, जितना अयोध्या के राज्य पर इतना अटूट प्रेम था, वो एकदम द्वेषी बन गई। एक कुछ घंटों के बीच में, चर्चा के बीच में, इतने सालों का प्रभु राम के ऊपर का प्रेम, माता के ऊपर जैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम पुत्र के ऊपर होता है, ऐसा अति प्रेम था, वो सब नष्ट हो गया, क्योंकि समय पर उसने मंथरा को सुनना बंद नहीं किया। सुनती रही, वो सुनती रही, उसी संग में रही। जैसे आप समझो, आप जाते हो कभी गलती से पहुंच जाते हो और फ्रेंड के घर में, और बैठे हुए ऐसे पापड़ खा रहे हैं, कोई चना खा रहा है, अचानक दारू की बोतल आ जाती, अचानक ग्लास आ जाते, अचानक दारू ग्लास में डाले जाती, और अचानक आपके सामने वो दोस्त दारू पीने लगते, और आप बैठ रहे हो शरबत पी रहे हो, बोल रहे अरे यार तू क्या शरबत पीता है, एक घूट तू भी ले ले। मैं नहीं पीता, मैं कभी भी नहीं पीता। अरे क्या यार नहीं पीता, पीता एक घूट पीने से क्या होता है, कुछ नशा नहीं आती है उसके अंदर, कुछ नहीं होता है, आप पी लो। नहीं 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 मैं नहीं पीता, मेरे लिए शरबत ठीक है। लेकिन बैठता वही है, वहां से उठ के जाता नहीं हो। 10-15 मिनट के बाद सब लोग बोलते हैं अरे क्या तू यार, अभी इतना दोस्ती है, अभी जिंदगी में कभी पिया नहीं, अभी तो आज तो कम से कम हमारे साथ में तो कंपनी तो दे दे कम से कम। ऐसे करते 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 अगर वहां से उठ के जाता नहीं है वो, तो फिर 10-15 मिनट के बाद में, 20 मिनट के बाद में, 30 मिनट के बाद में एक घूट तो पी ही लेता है वो, और 15 मिनट के उसके बाद में उसको जो चढ़ता है नशा, उसको इतना आनंद आता है, दूसरा भी पी लेता है, और कुछ देर बाद में क्योंकि पहली बार पी रहा है इसलिए बेहोश हो जाता है और उल्टियां करता है। तो वो कैसे बचेगा, जब जिद कर रहे उसके दोस्त हैं तभी उसको तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, भाई मैं जा रहा हूं, आई डोंट वांट टू बी हियर, तो ही बच जाएगा वो। और वही अगर चिपका रहेगा सिंघदाने के मुंह से तो दारू भी पी लेगा वो। उसी तरह से कई कई सुन रही थी, ये बोलती जा रही थी, मूर्ख बोलती जा रही थी, ऐसा बोल रही है वैसा बोल रही है, तभी जाकर उसको बोल चाहता गेट आउट फ्रॉम हियर, अब मेरा मन मेला मत करो प्रभु राम के विषय में। दासी थी उनकी, वो आज्ञा पालन करना कर्तव्य है, लेकिन सुनती रही सुनती रही सुनती रही, उसका पूरा मन जो है भ्रष्ट हो गया। फिर वो पूछती है अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है, अब मुझे बता करना क्या है। तो पहले कुसंगति ने क्या किया, मति पूरी भ्रष्ट कर दी, हाँ पूरा एक मैदान तैयार कर दिया गलत काम के लिए। फिर अभी उसको पूछा जा रहा है अभी करना क्या है उसके ऊपर, अभी उसका रोज झाड़ बो रही है विष का, पैदाइश कर रही है उसकी। तो कहते क्या करना है, अभी सुनो ध्यान से, अभी वो भी सुन रही है अलर्टली, क्या करना है मुझे। बोलते याद है तुमने उस युद्ध में दशरथ के साथ में युद्ध में तो सारथी बनकर गई थी, तब तुमने उसको बचाया था, तब पति ने बड़े खुश होकर कहा था दो वर मांग लो, तुमने नहीं मांगे थे उस समय। तो मैं तो भूल ही गई थी उसको। अरे मूर्ख औरत, भूलने का समय नहीं, याद करने का समय है। वो दो वर मांग लो अभी तुम। अच्छा क्या मांगू उसके अंदर, अभी वो बिजली की तरह कड़कती है, जैसे वज्राघात होता है ना, वज्रा भयंकर ऐसा वज्र आघात हो रहा है। कहते राजा को बोलो मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ और उस राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। तो बोलते क्यों ऐसा वन, मैं जब समझ सकती हूँ कि मेरे पुत्र को राजा बनाने की आपकी इच्छा है, तो नंबर वन में मैं रहूंगी ठीक है, लेकिन वो उसको बेचारे को जो वनवास भेजने की जरूरत क्या है। अरे मूर्ख कह गई, यही तो तेरी गड़बड़ है, जब तुम्हारा पुत्र राजा बनेगा और राम भी उसी देश में रहेगा तो राम की लोकप्रियता कैसे घटेगी, वो तो वही लोगों के आंखों के सामने, और राम के होते हुए उसकी लोकप्रियता का जो भार है, इतना बड़ा पर्वत है उसके सामने, वो नई नई लोकप्रियता बनाने में सफल कैसे होगा, वो दो लोग एक साथ लोकप्रिय नहीं हो सकते। तो भरत तो राजा बनने के बाद में अगर राम दूर नहीं है नजरों से, तब तक भरत अपना डेरा कैसे जमाएगा। तो जब भरत राजा बनेगा तो 14 साल उसको वनवास भेजने के लिए बोलेंगे, तो 14 साल उसको इनफ समय मिलेगा कि वो राज्य पर अपना रोब जमाएगा, अपना अधिकार जमाएगा, यश कीर्ति संपन्न करेगा, राज्य के लिए अच्छा काम करेगा, सब राज्य के लोगों के दिल जीतेगा। और तुम कह रहे हो उसको यही रखो, कैसे मूर्ख हो तुम। हाँ ये बात भी सही है, सारा विष जो है ना वो पूरा एक एक चम्मच करके डाल रही है पूरे ग्लास के अंदर, पिला रही है उसको, वो भी पीते जा रही है एक एक करके, जैसे वो नया नया व्यक्ति वो शराब का एक एक घूट लेते जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है वो क्या ले रहा है। तो फिर अभी कैसे करना है, तो कहती है राजा दशरथ का, अभी देखो कितनी मंत्रा ने कैसा उसका मन दूषित कर लिया। राजा जो है ना तुम पर बहुत प्रेम करता है, उसको पहले कमजोर बनाना पड़ेगा। कैसे कमजोर बनाना पड़ेगा, बोलते अभी तुरंत सारे अलंकार उतारो, ये तू सज्जज के बैठी हो ना राम का राज्याभिषेक करके इतनी खुश होके इतने मेकअप करके बैठी हो, पूरा उतार दो सब कुछ, ये रंगी बिरंगी साड़ी पहनी हुई है उसको उतार के काली साड़ी पहनो और अपने महल के नीचे उतरो क्रोध भवन में। रानियों का एक उस समय एक होता था क्रोध भवन, या तो कोप भवन कहते हैं उसको, जब गुस्सा आ गया ना तो वहां जाके बैठते थे वो लोग, वो गुस्सा करने का भी एक कमरा होता था। तो जाओ उतरो नीचे बेसमेंट में जाओ, सारे वस्त्र उतार कर काला साड़ी पहनो, सारे गहने उतार दो, बाल को छोड़ दो ऐसे पूरा, और जमीन पर लेट जाओ। फिर वो उनको बुलाओ भेजो, फिर वो पहले महल में आएंगे, फिर महल में आएंगे तो दासी बोलेगी महल में नहीं है कोप भवन में है, तो उनको धक्का लगेगा, अरे कोप भवन में क्यों, प्रभु राम का कल अभिषेक होने वाला है राज्याभिषेक, तो कोप भवन में क्यों, आज क्या हो गया ऐसा, कुछ मैंने कुछ बोल दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया तो बताओ, तो पहले धक्का लगेगा उनको, दिल कमजोर हो जाएगा उनका, फिर वो नीचे उतरेंगे। जब नीचे उतरेंगे तो तुम्हारी पीठ दरवाजे की तरह होनी चाहिए, जहां से आएंगे वहां तुम्हारी पीठ होनी चाहिए, जैसे ही उनके पैरों की आवाज सुनोगे जोर जोर से सिसकियां भर के रोना, तो और कमजोर हो जाएंगे, रानी तुम्हें क्या हो गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब वो बोलेंगे गिड़गिड़ा कर, कुछ नहीं बोलना उनको, रिस्पॉन्स ही मत देना, रोते रहना, तो हर कमजोर हो जाएंगे, बताओ क्या बात है, क्या बात है, आज तुम इस शाम को ऐसे पवित्र घड़ी पर क्यों रो रही हो, क्या चाहिए तुम्हें बोलो, तुम्हें जान दे तुम्हारे लिए, क्या वर चाहिए बोलो, क्या तुमको चाहिए तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन रोना मत प्लीज, रोना मत, रोना बंद करो और बताओ मेरी रानी तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। तभी उठकर खड़े हो जाना, तब भी उनको मत देखना, उनको पीटी दिखाना। और फिर याद है तुम्हें दो वर मैंने मांगे, तुमने दिए थे, मैंने लिए नहीं थे, आज मुझे देना चाहते हो तो आज दे दो। तो बोले दो वर क्या, 20 वर दूंगा, जान भी दूंगा, पक्का दोगे कि हिल जाओगे सुनने के बाद में, नहीं नहीं हम रघुवंशी है, ऐसे गाइड कर रही है वो उसको, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 कैसे कमजोर करके उसको खत्म कर देना है और अपने मन की इच्छा पूरी करना है। वैसा ही होता है, हा? राजा ऊपर आते हैं, पूछते रानी कहाँ है, उधर नीचे गई हुए, धक्का लगता है उसको, नीचे आते हैं भाग भाग के, देखते तो जमीन पर लेटी हुई है, बाल बिखेर कर लेटी हुई है और रो रो जोर से रो रही है, तो बार बार उसको गिड़गिड़ाते हैं, उसको उठाते हैं, वो नहीं उठती है, फिर बहुत मनाते हैं, फिर उसके खड़े हो जाती है, बोलते हैं दोगा दे दो मुझे आप, बोले दो क्या, 20 बार दूंगा आपको मैं, जान भी आपके चरणों में हाजिर कर दूंगा, आपके लिए क्या नहीं कर सकता मैं, इतनी शुभ घड़ी पर आप मुझे वरदान मांग रहे हो, दिल भर भर के दूंगा मैं आपको। अच्छा शायद मेरे दो बातें सुनकर तुम अपना मन बदल सकते हो, बोले नहीं मैं रघुवंशी हूं। रघुवंशी की क्या रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए, मर जाएंगे लेकिन अपना वचन को निभाएंगे। अच्छा याद रखना तुमने जो कहा है, मेरे वर सुनने के बाद में मन नहीं बदलना। बोले बहु कहो रानी तुम धीरे धुले दिल से कहो, देखो कैसे आपकी इच्छा पूरी करते हैं हम। तो कहते हैं नंबर 1 ऐसे बाएं हाथ से, नंबर 1 मेरे भरत को राजा बनाओ। तो थोड़ा धक्का लगता है, अरे अच्छा कोई बात नहीं। नंबर 2 उस राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। तो धाड़ करके भरत वो दशरथ महाराज गिर जाते हैं, उसको सुनकर ही ऐसा मतलब तूफान आंधी की तरह उनके ऊपर आघात होता है उसका, वो विचार भी नहीं कर सकते, उसे बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो रानी जोर से ऐसी हंसती है छदमी, बस हो गया तुम्हारा वर देने का काम पूरा हो गया, भाई वर तो पूरा हुआ ही नहीं, सुनकर ही बेहोश हो गए, पूरा कैसे करोगे, तो दासियां भाग भाग के आके पानी छिड़कती है, दास आते हैं उनको उठाते हैं गोद में रखते हैं उनको, राजा एकदम पूरे गलित कातर हो गए। तो कहते हैं कैकेयी तुम्हें क्या हो गया है, इतना प्रिय तुम्हारा राम क्या हो गया तुमको, आज उसको वनवास भेजने की बात करती हो। अरे चलो मान लिया मैंने भरत को राजा बनाने का, मान लिया मैंने कर दूंगा राजा उसको, और राम भी उसको तुरंत हाँ बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा राम इतना सद्गुण संपन्न है भरत पर इतना प्रेम करता है, अगर मैं कहूंगा कि भरत को राजा बनाना है तो तुरंत हाँ बोल देगा। लेकिन तुम ऐसे सद्गुण संपन्न राम को जंगल भेजने की बात क्यों कर रहे हो, तो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, देखो स्वामी मैंने तो मांगना चाहता था वो मांग लिया, तुमने देने का वादा किया है, अगर नहीं देना है मत दो, मत दो, मेरे वर को ना देते हुए हां बोलकर ना देते हुए शर्मिंदा होकर जिंदगी भर जियो, मतलब कैसे कठोर वचन बोल रही हो, रघुकुल का राजा बनकर सिंहासन पे बैठो, मुझे कोई इतराज नहीं है, तुमने तो कहा था जान दे दूंगा और वचन दे दूंगा पूर्ति करूंगा, अभी तुम अपने वचन पे हट जाओगे तो तुम्हारी इज्जत का सवाल है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मत दो, मुझे पता था कि तुम हिल जाने वाले हो, ऐसे करके और जमीर को ललकार रही है वो। तो फिर राजा तो पूरा रो रो के बेहाल हो जाता है, फिर भी उसके आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, जरा सा बुरा भी लग नहीं रहा कि मेरे पिता पति जो इतने जोर से रो रहे हैं, राजा दशरथ राजा अयोध्या के राजा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, उसकी मति इतनी कलुषित हो गई है कुसंगति की वजह से। फिर वो दासियों को बोलती है अपने, जाओ राम को बुलाने बुलाया ऐसे बुलावा भेजो, बोलो मैं बुला रही हूं। तो राम भी आते हैं महल में, तो महल की दासियां बोलती है, बोलते माँ माँ कहाँ है, माँ कैकेयी कहाँ है, बोलते कोप भवन में, बोले कोप भवन में क्या बात है, कोप भवन में क्यों, पिताजी कहाँ है, बोले वो भी कोप भवन में, अरे तो कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया आज, ठीक है नीचे चले जाते हैं, देखते तो पिताजी जमीन पर गिरे हुए हैं, ऐसे रो रहे हैं फूट फूट कर, आधे होश आधे बेहोश में, माता ऐसे कड़क खड़ी एकदम पीट करके, और वो आके कहते माता दंडवत प्रणाम, पिताजी दंडवत प्रणाम, वो पूछते माता पिताजी को क्या हो गया है, क्या हो गया है, मैंने उनसे दो वर मांगे थे उनको पूरा करने में कष्ट हो रहा है इसलिए रो रहे वो। बोला ऐसे वो क्या वर है जो मेरे पति मेरे पिता के लिए मुश्किल है आपको देने के लिए, या तो मैं पूरा करता हूँ उसको आप बताइए, मैं उनका पुत्र हूँ मैं उनका उत्तरदायित्व रखता हूँ, मेरा भी कर्तव्य है उनको हाथ बढ़ाना, अगर उनको मुश्किल है तो मैं पूरा करता हूँ, बताओ वो वर क्या है। तो वापस बिजली की तरह कड़कती है वो, बोलते वर यह है कि मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा और तुझे वनवास जाना पड़ेगा 14 साल। तो आपको क्या उम्मीद है राम ने क्या जवाब दिया होगा, क्या राम बेहोश होकर गिर गए उधर, धक्का लग गया उनका, अभी तो यज्ञ करके आया मैं, स्नान करके ऋषियों द्वारा यज्ञ करके आया, अभी तो आप कह रहे हो क्या गलत क्या हुआ क्या कर, मैं तो ज्येष्ठ पुत्र हूँ, हमारी कुल की रीति है ज्येष्ठ पुत्र हूँ, ऐसा आर्ग्यूमेंट किया उन्होंने, एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उन्होंने कहा माँ दुख एक ही बात का है, आपकी इच्छा तो मेरे भरत तो मैं मेरे लिए जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं, जब चाहे राजा बना लो, और मैं भी वनवास करने को बिल्कुल तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे भी ऋषियों का संग करने की बड़ी रुचि है, मुझे 14 साल में वन में रहूंगा, इतना ज्ञान प्राप्त करूंगा, सत्वगुण में रहूंगा, वहां पर इतना शांति रहेगी, सबके सत्संग में रहूंगा, उसकी भी नहीं है, दुख एक बात का हुआ है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, अगर आप पर विश्वास होता तो सीधे आप आती या मुझे बुला लेती और मुझे कह देती कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है आप पूरी करो उसको, आपने इतना पूरा नाटक जो रचाया है, मेरे पिता को यहाँ पर बेहोश करके रखा है, खुद वस्त्र पहन के काले वस्त्र पहन के खड़ी हो, अलंकार रहित होकर कोप भवन में खड़ी हो, इतना पूरा ड्रामा किया है, इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, इस बात का मुझे दुख हो रहा है कि आपने आपके राम को आपके पुत्र राम को कोई पहचाने नहीं आज तक, माता आपकी आज्ञा मेरे सर आंखों पर है, मैं अभी तुरंत जाता हूँ। लक्ष्मण उनके साथ में आए थे नेचुरली, वो जहां जहां राम जाते थे लक्ष्मण साथ में आए थे, और लक्ष्मण हमेशा छत्र पकड़कर आया करते थे, क्योंकि वो तो युवराज है ना, वैसे भी युवराज है और कल राजा बनने वाले भी, तो और भी कारण है छत्र पकड़ पकड़ के आए थे। लेकिन जब प्रभु राम निकले वहां से हाँ बोलकर, तो छत्र लेके पीछे गए, तो बोले लक्ष्मण अभी छत्र की आवश्यकता नहीं है, नो मोर छत्र रिक्वायर्ड, अब मैं तो वन में जाने वाला हूँ, युवराज भी नहीं हूँ राजा भी नहीं बनने वाला हूँ। तो लक्ष्मण तो आग से बता ज्वालामुखी उसकी फट रही थी, मतलब क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, कौन सा अस्त्र चलूँ और कौन सा चलाऊँ उसके ऊपर, इतना भयंकर ज्वालामुखी की तरह लक्ष्मण जी वहां पर खड़े थे, और वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि एक शांत सागर की तरह प्रभु राम उस ज्वालामुखी के सामने से निकल गए और ज्वालामुखी भी कुछ हद तक शांत हो गई, क्योंकि उनको लगा था राम को भी क्रोध आएगा, राम भी कुछ वचन कहेंगे, कुछ डायलॉग करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। राम तो एकदम शांत, जैसा एकदम शांत सागर होता है ना, वैसे शांत सागर जो है उस ज्वालामुखी के पास से निकल जाता है और छत्र को बंद करके उसके पीछे लक्ष्मण भागने लगते हैं, सुमंत्र भी भागने लगते हैं, वो रो रहे हैं सुमंत्र, राम बिल्कुल शांत है। एनीवे कथा तो आगे बहुत लंबी है कि कैसे प्रभु ने बिना एक बोलते ना, जैसे कि अपन किसी शांत नदी में समझो एक बड़ा तालाब है, बड़ा एकदम शांत पानी है, उसमें आप पत्थर फेंकते हो तो एक पत्थर की वजह से हजारों हजारों लहरें निर्माण होती है ना, गोल 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 आगे तक पहुंचती है बहुत देर तक। ये राम नाम का सागर ऐसा है कि उसमें कुछ भी फेंको आप कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इतनी गहराई की शांतता है मन में। आने वाले बड़े संकट के समय भी शांत है, इसलिए उनको परम महान कहा गया है। परम महान व्यक्ति वो होता है कि कितना भी उनको आप ललकारेंगे या कुछ चिढ़ाएंगे या कुछ बोलेंगे बुरा भला, महान व्यक्ति की शांति कभी भंग नहीं होती है, वो ऐसे ही स्थिर रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बड़ा सागर के अंदर अगर बाढ़ वाली चार नदियां घुस गई तो सागर बड़ा नहीं होता है, और चार बड़ी नदियां अगर सूख गई अकाल में और पानी लेना बंद कर दी तो सागर ऐसा सिकुड़ नहीं होता है, सागर सिकुड़ नहीं होता है। उस तरह से प्रभु रामचंद्र थे। तो कहानी यहां समाप्त करते हैं, उसका सार यह है कि यह सारा जो है मंथरा ने षड्यंत्र रचाया और उसको बली गई, बली कही गई, अगर समय पर उसको चुप करती और भगा देती वहां से तो यह सब रामायण नहीं होता, इतना भयंकर काम नहीं होता। और आगे ऐसा नहीं हुआ कि मंथरा की बात मानी, दशरथ राजा बने, सिंहासन पर बैठे, राज्य किया 14 साल, बड़ा उसका जो प्लान था वो यशस्वी कर दिया उसने, और प्रभु रामचंद्र तो 14 साल के अंदर इतने मतलब लोग उनको भूल गए, इसमें से कुछ भी एक बात भी सही नहीं हुई। जब भरत को पता चला ना, जब लौट के आया तो उसने मान वाला तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम राजा बनने वाले हो। बोले व्हाट नॉनसेंस, मेरे बड़े भैया को तो मैं राजा बनूं, बड़े भैया की बात कर रहे हो, तो जंगल भेज दिया मैंने उसको। क्या बात कर रहे हो तुम, मेरे प्रिय भ्राता राम को जंगल भेज दिया, आज से तुम मेरी माता नहीं। मैं ऐलान कर देता हूं कि मेरा दुर्भाग्य था कि तुम्हारे कोख से मैंने जन्म लिया, और आज मैं तुम्हें, आज के बाद तुम्हें एक बार भी माता करके नहीं पुकारूंगा और राज्य कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अब भी जंगल में जाता हूं, राज्याभिषेक का सामान लेके जाता हूं, राज्याभिषेक करके भाइयों को लौट के लेके आता हूं, और मैं उसके जब बदले में मेरे पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं बैठता हूं जंगल में जाकर। मतलब भरत ने सारा प्लान फेल कर दिया, कुसंगति से जो बड़ी योजना बनाई थी उसमें से एक कण भी यशस्वी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ देर के बाद में दशरथ महाराज राम 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 पुकारते हुए मर गए, सब रानियां विधवा हो गई, राम जंगल में भरत के द्वारा विटंबना हो रही है। ये मातृत्व का अपमान किया उसने ना, कि मुझे नहीं माता कहना, आप तो माता क्या वैरिणी से भी बढ़कर है आप, मैं आपको वैरिणी बनाना भी नहीं चाहता हूं, इतनी आप घिलौनी औरत हो। उधर भी प्लान फेल हो गया, और जा रहे पूरा सेना को लेकर, राजदंड लेकर, राजाभिषेक सामान लेकर, ब्राह्मणों को लेकर जंगल पहुंच गए वो। तभी भी उनको उम्मीद है कि ये मान नहीं जाएगा तो कम से कम राम का बात बोलकर, राम ने कन्विंस किया तो फिर वो मान जाएगा, तो राम ने कन्विंस किया कि मैं नहीं आऊंगा, तभी खुश हो गए मन में वो। लेकिन दशरथ भरत ने क्या बोला, अगर तुम जंगल में रहोगे तो मैं भी शहर के बाहर गांव में रहूंगा, तुम अगर पेड़ की खाल पहनोगे तो मैं भी पेड़ की खाल पहनूंगा, तुम अगर कंदमूल खाओगे मैं भी कंदमूल खाऊंगा, तुम नंगे पर घूमोगे मैं भी नंगे पर घूमूंगा, राजवस्त्र नहीं पहनूंगा, झोपड़ी में रहूंगा, तप करूंगा, तुम्हारी पादुका लेकर सिंहासन पर रखूंगा, उनकी पूजा करूंगा, उनका आदेश लूंगा, जैसे ही आप हो वैसे ही रहूंगा, एक भी चीज राज्य की नहीं भोगूंगा मैं राजा बनने के बाद भी, और सेवक राजा बनकर रहूंगा, आपकी सेवक के रूप में सेवा करूंगा, और अगर 14 साल के बाद में एक क्षण भी आपने लेट किया तो आप भरत को मरा हुआ पाओगे। तो सारा प्लान तो फेल कर दिया भरत ने, जो जो चाहिए था उसको। तो कुसंगति से जो आप सोचते हैं ना वो यशस्वी नहीं होता है कभी भी, कुसंगति का परिणाम विनाश ही होता है, गलत ही होता है हमेशा। तो हम सबको सीखना एक ही है ये कुसंगति से और समय से ही दूर रखना पड़ेगा आपको, समय पर। ज़्यादा समय उसके साथ में अगर समझो ट्रेन में खड़े हैं और समझो गर्दी है ट्रेन में और आप बीच में गाड़ी खड़ी है और किसी के बदन से बदबू आ रही है, तो आप कब तक रहेंगे उसके साथ में? जब तक ट्रेन में रहना पड़ेगा तब तक रहोगे। ट्रेन का पहला स्टेशन आएगा ना उसके आगे आपको उतरना भी नहीं होगा तो तुरंत उतर जाएंगे आप। बोले दादर में उतरना है, अभी तो मैं कांदिवली और बोरीवली के बीच में खड़ा हूँ, इतना घंटा कौन वो बदबू को सहन करेगा? तो वो तुरंत उधर बीच में उतर जाएगा और स्लो ट्रेन से जाएगा, चलेगा टाइम हुआ तो। करेंगे ना आप ऐसे? मतलब समय पर जितना मजबूरी है उतना साथ में रहेगा, लेकिन उसके बाद पहला मौका मिलेगा तो कुसंगति को छोड़ के चला जाएगा वो। हम लोगों को सीखना यही है मंत्रा के और कई कई के प्रसंग से। रामायण में यही बताया है कि गलत संग में अधिक समय रहना नहीं चाहिए, तुरंत जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ के चले जाना चाहिए। फिर आप गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, नहीं हो, बुद्धिमानी की बात यही है, गलत संगति को पहचानो पहले कि गलत संगति हो रही है, अभी अनजाने में हो रही है, उसको कम से कम समय में छोड़ दो और सत्संगति में जाओ, और जो उतना समय में जो बदबू आई थी ना उसको धो डालो, अत्तर लगा लो फिर सत्संग का, फिर दूसरे ट्रेन में चले जाओ, तो आपका जीवन सफल है। सत्संगति होनी चाहिए, साथ साथ कुसंगति को टालते रहना ही चाहिए। आज आएगी कुसंगति, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, आपके मति भ्रष्ट करने का प्रयास करती रहेगी, आपको हमेशा रोज के रोज उसको ना ना और ना बोलते रहना पड़ेगा। एक बार ना बोल के कुसंगति रुकती नहीं है, वो कल भी आएगी, वो परसों भी आएगी, आपको हर बार निश्चयपूर्वक ना बोलना पड़ेगा और हर बार ना बोलकर सत्संगति के पास जाना पड़ेगा, सत्संग करने के लिए जाना पड़ेगा, तब जाकर गंदगी नहीं आएगी और खुशबू आती रहेगी आपके जीवन में, तब जाकर प्रभु प्राप्त होंगे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।